أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لاسٹ جو ہم نے بات کی تھی نظام اعمال اور اس کے جو آثار، اور جو آخری اثر جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ انسان کے اطراف میں جتنے بھی انسان ہیں، انسان کے اطراف میں جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے اوپر اس کے اعمال اثر انداز ہو رہے ہیں. اسی طرح ماضی کے تمام جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں ان تمام کے اوپر انسان کا آج کا عمل اثر انداز ہو رہا ہے، اور آئندہ مستقبل میں فیوچر میں جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے اوپر بھی انسان کا آج کا عمل اثر انداز ہوگا. پھر یہ بات کی تھی کہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے، اور پھر ایک دلیل دی تھی کہ قیامت کے اندر، قیامت کا ایک نام جو خداوند متعال نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے وہ ہے یوم الجمع، اور آیت بھی اس حوالے سے تلاوت کی تھی. صحیح ہے، تمام انسانوں کو قیامت کے اندر جمع کیا جائے گا. اب اس جمع کرنے کی کیا حقیقت ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کا اصل ریالٹی کیا ہے اس جمع کرنے کی. آیا جس طرح دنیا میں ہم جمع ہوتے ہیں آیا اس طرح جمع ہونا ہے، یا اس کی کوئی اور ریالٹی ہے، حقیقت ہے. لیکن ایک دلیل جس کی وجہ سے انسان، اور بلکہ تمام انسانوں کو قیامت میں جمع کیا جائے گا، وہ انسان کے اعمال کی جزا کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں، آج آپ ایک عمل انجام دیں گے، میں ایک عمل انجام دوں گا، ظاہر سی بات ہے اس کی یا جزا ملنی ہے، یعنی اس کا مجھے ریوارڈ ملنا ہے، ثواب ملنا ہے. ثواب تو یہاں بھی مل رہا ہے، لیکن جو ثواب نہائی ہے، جو فائنل ثواب ہے، وہ مجھے آخرت میں ملنا ہے، بہشت کی صورت میں، جنت کی صورت میں، یا خدا نخواستہ جہنم کی صورت میں. اور ہر عمل اس کی ایک جزا ہے، ہر عمل کی ایک جزا ہے، چاہے وہ ثواب کی صورت میں، چاہے وہ سزا یا عقاب کی صورت میں. اب تمام انسانوں کو، اب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر، نتیجہ لے رہے ہیں. باقی جو پچھلی تمام ٹاپکس اور سیشنز گزر چکے ہیں ان تمام کا نتیجہ لے رہے ہیں، ان ایفیکٹس کا نتیجہ لے رہے ہیں. وہ اس طرح پانچ منٹ کے اندر خلاصتاً اس کو نتیجے کے طور پہ لیں گے، اور ہم اپنے اگلے ٹاپک پہ آئیں گے. وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو جب جمع کیا جائے گا قیامت کے اندر، تو وہاں پر ایک ایک انسان کو، ایک ایک انسان کا حساب اور کتاب کیا جائے گا. کیوں تمام انسانوں کی نسبت، کیوں تمام انسان، اصل سوال یہی ہے، کیوں تمام انسانوں کے سامنے ہر انسان کا نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا. اس کی وجہ یہی ہے، کیونکہ انسان کا ہر عمل تمام انسانوں سے مربوط ہے، ماضی کے تمام انسانوں سے مربوط ہے، مستقبل کے تمام انسانوں سے مربوط ہے. چونکہ تمام انسانوں سے میرا عمل مربوط ہے، لہذا قیامت میں سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ اس انسان کے عمل کی جزا دی جائے. کیونکہ قیامت کے اندر ہی ہمیں دکھایا جائے گا کہ انسان کے عمل کا ایک ایک انسان سے کیا رابطہ تھا، ان تمام کنیکشنز کو دیکھتے ہوئے جزا دی جائے گی. نہ یہ کہ میں نے ایک عمل ابھی انجام دیا ہے، میں نے مسجد بنائی ہے، مجھے اس کا ثواب، مجھے اس کی جزا مل جائے گی قیامت میں، اور اس کا کوئی رابطہ بھی نہ ہو کسی انسان سے. نہیں، میرا ایک ایک عمل، میرا چائے پینا، میں نے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی مثالیں دی ہیں جو ہم روزمرہ انجام دیتے ہیں. ہمارا ٹاک شو دیکھنا ٹی وی پہ، ہمارا کرکٹ کا میچ دیکھنا ٹی وی پہ، کوئی بالی ووڈ دیکھ رہا ہے، کوئی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ سارے اعمال ہیں. ان تمام اعمال کا تعلق اور کنیکشن دنیا کے تمام انسانوں سے مضبوط ہے، چاہے وہ ماضی کے انسان ہو، چاہے وہ فیوچر کے انسان ہو. بس جب انسان کو اس عمل کی جزا دی جائے گی تو تمام انسانوں کا وہاں پر حاضر ہونا ضروری ہے. इसको फिलहाल यहीं पर क्लोज करते हैं इस चैप्टर को। बातें मतलब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, असातिद ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बहुत ज़्यादा मतलब बयान किए हैं यहाँ पर। इसको इंशाल्लाह आप ये समझें कि हमने इन तमाम सेशंस के अंदर जो आमाल की बात की है, आमाल के आसार और इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स की बात की है, ये लेवल 1 ऑफ बहस थी। ये लेवल 1 था, लेवल 2 भी मौजूद है इसका, लेवल 3 भी मौजूद है इंशाल्लाह अगर खुदावंद ने, अगर आपके वजूद में ये तलब मौजूद हुई इन इस जैसे टॉपिक्स की, तो इंशाल्लाह खुदा हतमन आपकी इस तलब की इजाबत करेगा और फुलफिल करेगा इंशाल्लाह। लेकिन तलब हतमन मौजूद रहे आपके अंदर। अब हमें ये देखना है कि इन 2 या 3 सेशंस में कि इंसान के आमाल को मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया जाता है। अगर आपको याद हो, हमने दीन का एक बात की थी हमने, कि दीन एक मंजूमा है, दीन एक मंजूमा है, एक सिस्टमैटिक, एक सिस्टम बनाया है खुदा ने दीन के अंदर, और उस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं, और वो सारे पार्ट्स जब आपस में कनेक्टेड हैं, उन तमाम का कनेक्शन एक सेंट्रल पॉइंट से है। वो सेंट्रल पॉइंट क्या है अगर आपके जहन में हो, वो है तौहीद। तौहीद वो सेंट्रल पॉइंट है दीन का, कि जिसके आप ये कह सकते हैं कि तौहीद सरचश्मा है, कि उस सरचश्मे से तमाम अहकाम निकल रहे हैं, तमाम फुरुआत निकल रहे हैं, तमाम दीगर उसूल निकल रहे हैं, फिकही अहकाम, अखलाकी अहकाम, मानवियत के जो अहकाम है, और दीगर जितने भी इज्तिमाई अहकाम है, सोसाइटल जो अहकाम है, वो सब तौहीद से निकल रहे हैं। सबकी बाजगश्त, सबको लौटना तौहीद की तरफ है। बस दीन एक मंजूमा है, इसको हम कहते हैं मंजूमा, जिस तरह मैंने आपको गैलेक्सी सिस्टम की मिसाल दी थी। अब ये जो बहस है निजाम आमाल, सिस्टम ऑफ आमाल, ये भी कनेक्टेड है तौहीद से, ये भी कनेक्टेड है तौहीद से, एक लिहाज से तौहीद से कनेक्टेड है, और खुदा शनासी से, खुदा की शनाख्त से ये मजबूत है ये बहस। दो, ये बहस निजाम आमाल की, और इसको पेश करना, देखें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक बहस निजाम आमाल है, उस निजाम आमाल का एक सब टॉपिक जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको सब टॉपिक ही कहेंगे, वो है निजाम अर्ज़े आमाल। इसको फारसी में यू कहेंगे, अलबत्ता अरबिक से लिया गया है, मैं अभी वो अरबिक के अल्फाज लाऊंगा आपके सामने जो अहादीस में बयान हुए हैं, वो है अर्ज़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कि आप इसको उर्दू में कह सकते हैं पेश किया जाना, कि निजाम आमाल को और तमाम आमाल को पेश किया जाता है, अर्ज़े किया जाता है आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की जानिब, उनकी खिदमत में पेश किया जाता है। बस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये बहस, ये टॉपिक इमाम से कनेक्टेड है, इमाम के वजूद से कनेक्टेड है, इमामत से कनेक्टेड है, इमाम शनासी, आप इसको कुल्ली उनवान दे सकते हैं, इमाम शनासी, इस बहस का ताल्लुक इमाम शनासी से है, और इमाम शनासी से ही मजबूत किससे कनेक्टेड है, माजरत, ये टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, नॉइजेस का इशू आएगा, इससे मैं माजरत चाहता हूँ, आप दुआ करें कि ये टेक्निकल मसाइल हल हों ताकि ये नॉइज रिडक्शन भी हो जाए इंशाअल्लाह। इमाम शनासी से कनेक्टेड है, और एक और अहम टॉपिक जिससे हम सब गाफिल हैं वो ये कि इंसान का दाइमन, हमेशा 24/7 लम्हा ब लम्हा ताल्लुक है इमाम से, इंसान दाइमन हमेशा इमाम के साथ महशूर है, जिस तरह हम अपने बदन के साथ महशूर हैं हमेशा, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, हमेशा 24/7 अपने बदन के साथ महशूर हैं, अपने दिमाग और दिल के साथ महशूर हैं, इसी तरह हम अपने इमाम के साथ महशूर हैं। अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस तरह हम महशूर हैं अब ये देखना है, हम किस तरह अपने इमाम के साथ कनेक्टेड हैं। अब देखें यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, ये बात बहुत ही यानी आप ये कह सकते हैं एक मुबतलाबे मसला है, जिससे हम अहकाम में नहीं सीखते कि फला प्रॉब्लम एक मुबतलाबे प्रॉब्लम है। सही, बाज़ औक़ात अहकाम, फ़िक्ही अहकाम ऐसे होते हैं जो मुबतलाबे हैं। मसलन शकियात नमाज मुबतलाबे मसला है हमेशा की तरह, और हमेशा है ये मसला। इसी तरह कुछ और मसाइल हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं जिसमें हम मुबतला हैं। वो ये है कि हम इस वक्त जो हमारी आप कह सकते हैं, ना सिर्फ आप कह सकते हैं तमाम इस्लामिक सोसाइटीज़, सही है, खास तौर पे हम शियों की बात करेंगे क्योंकि शिया का ताल्लुक विलायत से है, मोहब्बत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से है, और आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत से एक डायरेक्ट कनेक्शन है शिया का। तो यहाँ पर एक मुब्तला में मसला है, इसको गौर से सुने आप। इसको 2 मिनट बात करूंगा इस बारे में और फिर मैं गुजर जाऊंगा, लेकिन ये एक अहम मुब्तला में मसला है। वो ये कि इस वक्त हमारी सोसाइटीज खास तौर पर मुब्तला हैं दो किस्म के इफरात से, दो किस्म के इफरात मौजूद हैं। उन इफरात, और यानी आप इफरात को हम कहते हैं एक्सट्रीमिज्म, इफरात यानी एक्सट्रीम में जाना किसी मसले में, ठीक है। आप देखें बाज लोग आप कहते हैं ना ये लड़का बहुत पढ़ाकू है, सही है, पढ़ाकू होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाज अवकात इंसान एक्सट्रीम पर जो है ना पढ़ाकू हो जाता है, एक्सट्रीम पे बुक रीडिंग करता है, स्टडीज करता है। उस एक्सट्रीम क्यों एक्सट्रीम है? क्योंकि वो उस एक्सट्रीम की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता है, उस एक्सट्रीम पढ़ने की वजह से अपने दीगर अहम मसाइल की तरफ जो है वो रुजू नहीं करता, उनको उनके पास नहीं आता, उनकी उनको जो है वो देखता नहीं है। मसलन पढ़ाई की वजह से अपने माँ बाप से भी जो है दूर हो जाता है, या कभी अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता है, अपनी अपने बच्चों को टाइम नहीं देता, तो या बाज़ लोग इतना बिलाखिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लग जाते हैं कि बाकी दीगर मसाइल जो हैं वो भूल ही जाते हैं। इसको कहते हैं इफरात, एक्सट्रीम होना किसी चीज़ के अंदर। इसी तरह हम अपने दीन के अंदर, अपने इस्लाम के अंदर बाज़ औक़ात हमेशा नहीं होता, लेकिन ये बाज़ औक़ात भी बाज़ औक़ात शदीद हो जाता है, एक्सट्रीम का शिकार हो जाते हैं, इफरात का शिकार हो जाते हैं। इस एतबार से दो किस्म के ग्रुप्स मौजूद हैं, गौर से सुने इसको। देखें विलायत का क्या माना है, विलायत का जो सबसे पहला माना है जो किया जाता है वो है मोहब्बत। ओके, मोहब्बत किया जाता है, यानी हमें अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीगर तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। ये विलायत का एक माना है। अब इस माना को इतना एक्सट्रीम लिया गया कि हम एक चीज को भूल ही गए, जो शिया हजरात हैं, शिया मोमिनीन व मोमिनात हैं, वो इतना मोहब्बत, तो बिलाखिर मोहब्बत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस मोहब्बत की खातिर वो मोहब्बत इतनी एक्सट्रीम पे चली गई कि वो एक चीज को भूल गए। वो एक चीज क्या, मैं आता हूं उसकी तरफ। अब जो दूसरा तबका है वो भी उस एक चीज को भूल गया है, ठीक है। वो दूसरा तबका क्या कहता है, वो विलायत का फकत और फकत पॉलिटिकल माना करता है। वहां पर ये भी मुहिब है, ये भी मुहिब है, वो भी मुहिब है, लेकिन वो मोहब्बत में बहुत एक्सट्रीम है, ये विलायत के पॉलिटिकल माने में बहुत एक्सट्रीम है। दोनों ग्रुप्स के अंदर एतदाल नहीं है। क्यों एतदाल नहीं है? क्योंकि एक चीज को भूल गए जिसके बारे में फरावान रिवायतें मौजूद हैं। मैंने इस वजह से इतनी ताकीद के साथ कहा क्योंकि वाकया जब मैं खुद ये रिवायत देखता हूं, और किताब यानी आप ये समझे कि ये हदीसें, ये अहादीस कलामी मासूमीन अलैहिस्सलाम इन मौजूआत के बारे में और उस मौजू के बारे में जो ये दोनों तबकात भूल गए, रिवायतें हजारों मौजूद हैं और ये शायद दफन हो चुकी है किताबों के अंदर। इनको निकालना जरूरी है किताब इन इस दफन खाने से, इस कब्रिस्तान से। वो मौजू क्या है? ये वो मौजू है जिसकी वजह से, चूंकि हमने उस मौजू को नहीं देखा है और हमने उस मौजू को, उस टॉपिक को नहीं अपनाया है, लिहाजा हम आज आयतुल्लाह बेहजत फरमाते हैं कि हमारी आज जितनी भी मुश्किलात हैं, हमारी जितनी भी मुश्किलात हैं, वो हमारी अपनी ईजाद करदा महरूमियतें हैं। हमने अपने आप को बहुत सारी चीजों से महरूम किया हुआ है। वो क्या टॉपिक है? चलें मैं आपको सरप्राइज खत्म कर देता हूँ, सस्पेंस खत्म कर देता हूँ। वो क्या है? वो है इमाम से पर्सनल कनेक्शन। आपको लगता है कि आप और जितने भी इंसान आपके इर्दा गिर्द हैं, मैं अपने आप को भी शुमार करता हूँ, क्या हम अपने इमाम से पर्सनली कनेक्टेड है? नहीं है। हम अपने रिलेटिव से किस कदर क्लोज पर्सनली कनेक्टेड हैं? हम अपने माँ बाप के साथ किस तरह पर्सनल कनेक्टेड हैं? बेहतरीन रिश्ता है माँ बाप के साथ, क्योंकि वो सामने हाजिर है जिस्मानी तौर पर। क्या इसी तरह हम अपने इमाम से कनेक्टेड हैं पर्सनली? हम इमाम को पुकारते तो हैं, लेकिन पर्सनल कनेक्शन है या नहीं है? सवाल ये है मेरा आपसे। मुझे जो यूं एहसास होता है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निगाह नहीं है इमाम की तरफ। अभी मैंने आपके सामने यही कहा कि ये जो बहस है निजाम आमाल की, और हमारे आमाल जब पेश किए जाते हैं इमाम के सामने, इस बहस का ताल्लुक इमाम से दाइमी कनेक्शन के साथ है। यानी अगर मेरा एक एक अमल, छोटा सा छोटा अमल पेश किया जा रहा है इमाम की खिदमत में, इसका मतलब मैं दाइमन कनेक्टेड हूं इमाम से। अगर मैं अपना इस तरफ से कनेक्शन मेरा नहीं है इमाम के साथ, लेकिन इमाम का तो कनेक्शन है मेरे साथ, उस तरफ से तो नेटवर्क आ रहे हैं, नेटवर्क सिग्नल्स आ रहे हैं, मैं क्यों उस उन सिग्नल्स को नहीं ले रहा हूं? क्या है प्रॉब्लम मेरे अंदर? आप देखें, इसी वजह से बिलाखिर ये दोनों मैंने आपको कहा ना, बिलाखिर मोहब्बत है इमाम से, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं मुख्तलिफ एतबार से, मुख्तलिफ सूरतों में। आप देखिए, अगर मोहब्बत ना होती इमाम से, तो क्या हम विलादत के अंदर, विलादत के अय्याम में महफिल बरपा कर रहे होते अगर मोहब्बत ना होती? चूंकि मोहब्बत है तो हम उनकी खुशियों में खुश होते हैं, चूंकि मोहब्बत है उनके गमों में गमगीन होते हैं। और मोहब्बत है, ओके, ये तो कंफर्म है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। चूंकि कनेक्शन नहीं है, हम महरूम हैं हदीस किसा से, हम महरूम हैं ज़ियारत जामे कबीरा से, हम महरूम हैं दुआए नुतबा से, हम महरूम हैं तवस्सुल से। अब आप कहेंगे, आगा शबे जुम्मा दुआए कोमल होती है हमारे यहाँ पर? बिल्कुल होती है, मैं मानता हूँ। हदीस किसा होती है, ज़ियारत जामिया, मुझे नहीं पता ज़ियारत जामिया कबीरा का कितना रिवाज है हमारी सोसाइटीज के अंदर, शायद मेरा नहीं ख्याल है उस कदर है जहां तक मेरी इत्तला है, लेकिन दीगर सोसाइटी, कुछ सोसाइटीज में है, कुछ में नहीं है। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है हदीस किसा, मानता हूं मैं आपकी बात, लेकिन वो निगाह नहीं है। यानी पर्सनल, यानी हदीस किसा के जरिए मेरा एक पर्सनल कनेक्शन, एक रियल टाइम कनेक्शन इमाम के साथ वजूद में आ रहा है, ये नहीं है। सही है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि हम एक दोबारा जाएं, अहादीस की किताबों को देखें, उसूल काफ़ी के तर्जुमे मौजूद हैं, दीगर बास कुछ किताबों के इंग्लिश एंड उर्दू तर्जुमे मौजूद हैं। अगर तर्जुमे नहीं हैं किताबों के, उलमा से तकाजा करें कि किताबों के जो है वो तर्जुमों का एहतमाम करें। लिहाजा, क्योंकि बिलाखिर हम बुक रीडिंग से महरूम हैं अपने सोसाइटीज़ के अंदर, और चूंकि बुक रीडिंग से महरूम है, तो ये एक बड़ी मुश्किल ये है, हम महरूम हैं बिलाखिर। बस तवस्सुल वो टॉपिक है जिससे मुहिब्बीन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम महरूम है तवस्सुल से। अब चाहे वो मुहिब्बीन उस विलायत को कामिलन सियासत लेते हो, चाहे वो विलायत को फकत मोहब्बत लेते हो, ये दोनों बिलाखिर तवस्सुल से महरूम है। और तवस्सुल का इस कदर ताकीद है बुजुर्गान के कलाम में, उलमा के कलाम में, आयतुल्ला बहजत के कलाम में, आयतुल्ला जवादी आमनी के कलाम में, आयतुल्ला हसन ज़ादा आमनी के कलाम में, दीगर अल्लामा तबा तबाही के कलाम में, दीगर आइम्मा के कलाम, दीगर बुजुर्गान और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम में तवस्सुल की इतनी अहमियत बताई गई है कि शायद, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर हम तवस्सुल को अपने माशरों में, अगर पूरी इस्लामिक सोसाइटी, अब नॉन मुस्लिम्स को छोड़ दें, इस्लामी ममालिक, इस्लामी कंट्रीज और मुसलमान अगर तवस्सुल को सही अपना लें, एक दिन में कोरोना वायरस का मसला हल हो सकता है, एक दिन में कोरोना वायरस का मसला हल हो सकता है अगर तवस्सुल के बाब को खोला जाए और उसको अपनाया जाए। क्योंकि कुरान मजीद में भी आया है कि हम इंसान को मुश्किलात में, खसारे में, परेशानियों में मुब्तला करते हैं, क्यों? लअल्लकुम यतवर्रउन, या लअल्लकुम यवर्रउन, ताकि वो खुदा की बारगाह में आए। और खुदा की बारगाह में आकर दुआ करना उसका एक तरीका तवस्सुल है, यही हदीसे किसा है, यही ज़ियारत जामिया है, और ये सारी चीज़ें। इंशाल्लाह खुदा हमें तौफीक दे कि हम इन प्रिस्क्रिप्शंस को अपनाइए, प्रिस्क्रिप्शंस है मासूमीन अलैहिस्सलाम के, हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये अलग बात है कि एक तबका इसको विर्द कहता है, ये विर्द नहीं है अजीज मान, ये बिलाखिर आइम्मा का कलाम है। आइम्मा ने खुद कहा है कि ये विर्द करो, आप आइम्मा ने खुद कहा कि ये जिक्र करो, ये विर्द नहीं है बल्कि जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ये सवाब मिलेगा। ये सवाब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि इंसान के मानवी वजूद में फैलाव का बायस बनता है। इंसान का जो मानवी वजूद है, इंसान की रूह है, उसका जो नफ्स है, उसमें वसअत आती है, उसमें एक किस्म की आप कह सकते हैं कि एग्जैजरेशन आती है, फैलाव आता है। चूंकि फैलाव आता है वो कनेक्शन बरपा होता है, वो कनेक्शन ईजाद होता है मासूमीन अलैहिस्सलाम से। तो ये बिलाखिर हम इसको दोबारा एतदाल की निगाह से देखें तो यही मेरा एक सजेशन था। बस निज़ाम आमाल और आमाल को पेश करना आइमा अलैहिस्सलाम की खिदमत में, इसका ताल्लुक तौहीद से है, दो इमाम शनासी से है, से तीन माद से है, कयामत से है, और कयामत के अंदर जो आमाल की जजा दी जाएगी इंसान को, उससे है ये टॉपिक रिलेटेड। ओके, और आखिरी ताल्लुक किससे है? महदवियत से, इमाम जमान अलैहिस्सलाम से, इमाम महदी अलैहिस्सलाम से। इस टॉपिक का हम इंशाल्लाह रिवायतें देखेंगे आपके सामने, पेश करूंगा मैं आपके सामने, देखेंगे आप खुद, आप फैसला करें कि क्या है वो किताब जो यहाँ पर इसको हम सोर्स के तौर पर अपनाएंगे। क्योंकि बिलाखिर तय ये किया कि हम जो भी टॉपिक आपके सामने पेश करेंगे वो ऑथेंटिसिटी हो उसकी, एक ऑथेंटिक किताब की तरफ जिसको तमाम उलमा कबूल करते हैं। इस किताब का नाम है बसाइरुद दरजात, जो कि मारूफ किताब है, जिसमें अहादीस मौजूद है आइमा अलैहिस्सलाम की। और इसके अंदर जिल्द नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर तीन बाब, तीन चैप्टर्स जिक्र किए गए हैं कि जो इस मौजू से मजबूत है। ठीक है, मसलन एक बाब यह है, अल आमालो तुअरदु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आइमा अलैहिस्सलाम। आमाल जिनको पेश किया जाता है, जिनको अर्ज़े किया जाता है रसूल खुदा और आइमा अलैहिस्सलाम के ऊपर। पर अब इंशाल्लाह इन और दो और बाब हैं, इंशाल्लाह इन अबवाब से आपके सामने अहादीस में पेश करूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको हम वाइट बोर्ड एनिमेशन पर भी लेके आएंगे, सामने प्रेजेंटेशन के तौर पर भी, ताकि आप खुद इस अरबिक टेक्स्ट को देखें। इन अहादीस का जो अरबिक टेक्स्ट है, पॉसिबल है मैं इसको फकत तर्जुमा करूं और आपके सामने पेश कर दूं, नहीं, ये नहीं करना है। मैं आपके सामने अरबिक जो असल कलाम है आइमा अलैहिस्सलाम का वो पेश करूंगा, ताकि इस कलाम की नूरानियत भी हमारे वजूद में मुंतकिल हो इंशाअल्लाह। अगर आपको याद हो वो कौन सी आयत है जो इस इन सेशंस के अंदर, इस टॉपिक के अंदर इब्तिदा से, शुरू से ही मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूं, अगर आपको याद हो वो है सूरह तौबा आयत नंबर 105। सूरह तौबा आयत नंबर 105, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون। جو عمل انجام دینا چاہتے ہو انجام دو، جو عمل فسيرى الله اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، और कौन? व रसूल हूँ, रसूल खुदा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनून। अब ये जो बाब है आमाल को पेश करना, ठीक है, ये इस आयत की ज़ैल में तमाम हदीसें बयान हुई हैं आमाल को पेश करने के एतबार से। जो सबसे पहली हदीस है इसी किताब में बसाइल और दराजात के अंदर, वो ये है कि जिसमें शुएब मैसनी जो है रावी हैं वो नकल करते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम से यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं कि खुदा ने ये जो फरमाया है कि इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहू वल मोमिनून, इस आयत में अल मोमिनून से क्या मुराद है? इस ये रावी पूछते हैं कि अल मोमिनून से क्या मुराद है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते के हुमुल अइम्मा, इमाम फरमाते हैं हुमुल अइम्मा, वो ही अइम्मा है यानी अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम। सही है। और भी तकरीबन शायद मेरे ख्याल में कल जो मैं मुताला कर रहा था इस बाब के अंदर जो अहदीसें थी, काफी अहदीसें इस आयत के हवाले से, और मुख्तलिफ रावियों ने यही सवाल किया इमाम से कि मोमिनों से क्या मुराद है, और तमाम अहदीस में यही आया है। इमाम ने मुख्तलिफ यानी बाज़ुकात इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, बाज़ुकात इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया गया है कि अल मोमिनून जो इस आयत में आए से क्या मुराद है। तमाम ने यही फरमाया तमाम अहदीस में कि मुराद अइमाए मासूमीन। बाज़ुकात ताबीर ये आई है नहनु, इमाम फरमाते हम नहनु। अच्छा, अब हमें ये देखना है, अब हम वारिद होते हैं डायरेक्टली इस मौजू के अंदर कि वो कौन से जमाने हैं, वो कौन से टाइम्स हैं जिसके अंदर इमाम को आइमाए अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। बहुत ही जिद्दी मौजू है यानी सीरियस मौजू है, इसको एहतमाम के साथ सुने। आप ये समझे कि इस वक्त आपके लिए जो सबसे अहम मौजू होना चाहिए वो ये मौजू है। क्यों? क्योंकि क्या पता कल जुहूर हो जाए और जुहूर के बाद कयामत भी फौरन आ जाए। कोई मालूम है? कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि टाइम और हवादिस और वाकयात इवेंट्स जो इस जमाने में गुजर रहे हैं वो इस कदर तेजी से गुजर रहे हैं कि इंसान को टाइम का पता नहीं चलता है। इस कदर वाकयात और इवेंट्स तेजी से रूनुमा हो रहे हैं, लिहाजा मुमकिन है कल को इंशाल्लाह जुहूर हो जाए, इसी जुम्मे को जुहूर हो जाए। और अगर आपको मालूम हो हदीस में है कि जुहूर इमाम जमान अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन होगा, और एक और हदीस में कि कयामत का दिन भी जुम्मे के दिन बपा होगा, बरपा होगा। ऐसा तो नहीं कि जुहूर जिस दिन हो जाए उसी दिन कयामत भी हो, मालूम नहीं है, या कयामत उसके अगले हफ्ते वाले जो जुम्मा आएगा उस दिन हो जाए, लिहाजा टाइम का मालूम नहीं। लिहाजा हम कोशिश करें अपने आमाल को सुधारें ताकि जब कयामत के उस महशर में जाएं, या बल्कि उससे पहले ज़ुहूर इमाम अलैहिस्सलाम को दर्क कर सकें, हम कम से कम जब इमाम के सामने जाएं तो अच्छे आमाल लेकर जाएं। अलबत्ता जो आमाल जाएंगे इमाम के सामने वो जुहूर से पहले बल्कि डेली बेसिस पे जा रहे। अब आप देखें यही टाइम से क्या मैं बजाय इसके कि अपनी तरफ से बात करूं, मैं अहादीस और आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम का कलाम पेश करूं, ये बेहतर नहीं है। सबसे पहली हदीस अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल अमाला तुअरदु अलैया फी कुल खमीसिन। आमाल इंसानों के जितने भी आमाल हैं, तुअरदु अलैया, देखें ये तुअरदु का जो लफ्ज आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, यानी पेश किया जाएगा, पेश किया जाता है। तुअरदु अलैया, हम पर अर्जे किया जाता है, पेश किया जाता है, फी कुल खमीसिन, हर जुमेरात को। फइजा कानल हिलाल उकमिलत फइजा कानन निस्फ मिन शाबान उर्जत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अलीन व अला अलीन थुम्मा युनसखु फिल ज़िक्र अल हकीम। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले इमाम ने क्या फरमाया? जुमेरात को। इसके बाद इमाम फरमा रहे कि जब चांद मुकम्मल हो जाता है और नीमा शाबान 15 शाबान की जो का जो दिन आता है निस्फ मिन शाबान 15 शाबान को इंसान के आमाल पेश किए जाते हैं। तो आप देखें सबसे पहले हर जुमेरात को इसी हदीस में 2 टाइम्स बताए जा रहे हैं, एक जुमेरात और 2 साल में 1 दफा 15 शाबान, ठीक है, जब चांद मुकम्मल हो जाता है। और उसके बाद तीसरा मरहला जब पेश किया जाता है, सुम्मा युनसखु फी जिक्र हकीम, फिर जिक्र हकीम में उसको लिखा जाता है। अब जिक्र हकीम उलमा असादी फरमाते हैं जहां पर तब्दीली का आना मुश्किल है, यानी एक दफा मैंने अमल अंजाम दिया है, सही है, इंसान ने अमल अंजाम दिया है, उसको जब पेश किया जाता है हर जुमेरात को, फिर उसके बाद 15 शाबान को साल में एक दफा, और फिर जिक्र हकीम की किताब में उसको लिखा जाता है। उलमा फरमाते हैं जिक्र हकीम में जब इंसान का अमल लिख दिया जाता है उसमें तब्दीली ईजाद करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। अब आप कहेंगे ये जिक्र हकीम कौन सी किताब है? उलमा यहां फरमाते हैं कि इंसान के जो नामाए आमाल की जो किताबत की जाती है उस किताबत के कई मराहिल हैं। हम ये समझते हमने ये सुना हुआ है कि ये जो 2 फरिश्ते हमारे राइट और लेफ्ट में मौजूद हैं सिर्फ वो हैं जो हमारे आमाल लिख रहे हैं। ये किताबत का एक मरहला है जो ये फरिश्ते अंजाम दे रहे हैं। अहादीस के अंदर किताबत आमाल के मुख्तलिफ मराहिल, मुख्तलिफ किताबतें मौजूद हैं, उसमें से एक जिक्र हकीम है। जिक्र हकीम में जब इंसान का अमल लिख दिया जाता है उसमें तब्दीली ईजाद करना आसान नहीं। मसलन खुदा ना खासा इंसान ने गुनाह अंजाम दिया है, तौबा नहीं की है, और वो जब लिख दिया जाता है जिक्र हकीम के अंदर, अगर वो पहुंच गया वहां तक जिक्र हकीम तक, उसमें उस गुनाह को मिटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। उलमा ये नहीं फरमाते कि असलन मुमकिन नहीं है कि इंसान के गुनाह माफ जो है वो ना हो, नहीं, माफ हो सकते हैं आसानी से नहीं, अगर जिक्र हकीम में खुदा ना खास्ता आ जाए और तौबा से पहले। तो ये इंसान देखें ये सारी बहसें मुबतला बे मसाइल हैं, जिस तरह अहकाम शकियात नमाज मुबतला बे हैं, दीगर फिकही अहकाम मुबतला बे हैं, इंसान का अमल और इसके बारे में जो अहादीस मौजूद हैं ये सब मुबतलाबे मसाइल हैं। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुइला अन कौली कौलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इमाम अलैहिस्सलाम को सवाल किया गया उस आयत के बारे में, वही जो आपके सामने तिलावत की सूरह तौबा की आयत नंबर 105 के, इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। इमाम ने फरमाया इस आयत के जवाब में कि ये आयत क्या कह रही है। इमाम फरमाता है कि इन कौला इन अमाल इबाद, लोगों के अमाल, बंदगान के अमाल, तो और वो अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस हदीस में क्या था? उस हदीस में ये था कि उरवत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अलियन, उस पहली हदीस में नबी अकरम पर पेश किए जाते हैं आमाल और हजरत अली अलैहिस्सलाम पर पेश किया जाता है। अब इस हदीस में क्या है? तो उरवत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम की जात पर ये आमाल पेश किए जाते फी बेबाक कुल्ला सबाहिन, हर सुबह, डेली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, डेली मॉर्निंग हमारे आमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए जाते हैं, अबरा रहा व फुज्जा रहा, चाहे वो आमाल अच्छे हो नेक हो, चाहे वो आमाल बद हो बुरे हो, पेश किए जाते हैं। अब इमाम फरमाने आगे देखें फहजरू फहजरू, अगर तुम्हें मालूम है, अब तुम्हें अगर मालूम हो चुका है कि तुम्हारे आमाल हर सुबह नबी अकरम की खिदमत में पेश किए जाते हैं, फहजरू एहतियात करो, ख्याल करो, ध्यान रखो तुम हर अमल के बारे में, हर अमल को अंजाम देने से पहले सोचो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यानी वाकया नहीं तो एक सीरियस बहस है, ये तो सीरियस टॉपिक है ये। यानी अगर खुदा ना खासा आप देखें, अब यहां पर एक टॉप, अब यहां पर एक हम एक नतीजा निकाल सकते हैं असातीद की रहनुमाई से अलबत्ता, वो ये कि अगर इंसान एक अमल अंजाम दिया है, मसलन अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के बाद दोपहर के 2 बज रहे हैं, खुदा ना खासा एक इंसान ने गुनाह का अमल अंजाम दिया है, गाना सुना है, कोई झूठ बोला है, कोई किसी की गीबत की है, किसी पर तोहमत लगाई है, या व्हाट्सएप पर टाइम जाया किया है, इंस्टाग्राम पर टाइम जाया किया है, अब गुनाह अंजाम दिया है, अगले दिन सुबह के टाइम पर, सुबह के टाइम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अमल पेश किया जाएगा। अगर इंसान ने सुबह से पहले, अगले दिन सुबह से पहले, मॉर्निंग से पहले अगर तौबा कर ली, अगर तौबा कर ली तो ये अमल उसका मुआफ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा उसके नामा अमाल से। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब उस इंसान के उस दिन के अमाल का जो पर्चा जाएगा, पेपर जाएगा, तो उस पेपर पे ये अमल, गुनाह का अमल मौजूद नहीं होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि नबी अकरम को नहीं मालूम कि उस इंसान ने गुनाह अंजाम दिया था। नहीं, नबी अकरम को मालूम है कि उस इंसान ने गुनाह अंजाम दिया था, लेकिन उसने तौबा भी की है, उसने तौबा भी की है, तो ये जुबरान हो जाएगा, एक कंपेंसेशन हो जाएगी। अच्छा, अब एक हदीस में आ जाएं, अब देखें आप इसको नोट करते जाएं कि हर हदीस में कौन कौन से टाइम बयान किए जा रहे हैं। मैं मुझे मालूम है इस वक्त 40 मिनट्स हो गए इस सेशन को, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये हदीस का जो सेशन है, मैं आपके सामने 7 हदीसें तक, टोटल 7 हदीसें बयान कर दूं, और फिर इंशाल्लाह अगले उसमें आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्डिंग टाइम जो लिमिट है, वो हमारे पास अराउंड 5 to 7 मिनट्स मौजूद है। कोशिश करेंगे इन हदीस को मैं तमाम को, लेकिन आप ये टाइम नोट कर दे जाएं कि पहली हदीस में कौन सा टाइम आया, जुमेरात और साल में एक दफा यानी 15 शाबान, और दूसरी हदीस में हर सुबह। अब तीसरी हदीस में आप देखें, तीसरी हदीस में ये आया है कि जी अनज़ैर शहाम, ये रावी है ज़ैर शहाम, ये फरमाते हैं सअल्तुहु, मैंने सवाल किया इमाम अलैहिस्सलाम से, अन आमाली हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के, उम्मत का लफ्ज़ है, इस उम्मत के आमाल के बारे में मैंने इमाम से सवाल किया, उम्मत के आमाल, उम्मत के आमाल, सोसाइटी के आमाल। इसका मतलब है कि आमाल 2 किस्म के हैं, आमाल का जो सिस्टम है, जो निजाम है, वो 2 किस्म का, एक इंडिविजुअल आमाल का निजाम है और एक सोसाइटी के आमाल का निजाम है, इज्तिमाई आमाल का निजाम है। ये दोनों आमाल पेश किए जाएंगे इमाम की खिदमत में। खूब, अब इमाम क्या जवाब फरमा रहे हैं? इमाम फरमा रहे हैं कि कौला मा मिन सबाहिन यम्जी इल्ला वहिया तुअरज़ु अला नबीयिन नबीयिल्लाह अमालु हाज़िहिल उम्मा। इमाम फरमाने के हर सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं, इस उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं। खूब, अब देखें यहां पर उम्मत के आमाल हैं, ये अहम है। यहां पर आप एक नतीजा नहीं निकाल सकते यहां से, अगर हम यहां पर जब उम्मत का जो लफ्ज आया, सोसाइटी का जो एक लफ्ज आया है, तो इससे हम ये नहीं नतीजा निकाल सकते कि अमर बिल मारूफ व नहीं अस मुनकर एक अहम टॉपिक वजूद में आता है यहां पर। यानी अगर मैं देख रहा हूं कि मेरा हमसाया मसलन गुनाह में मशगूल है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसको नहीं अस मुनकर करूं। अगर मेरी गली के अंदर कोई गुनाह का अमल अंजाम पा रहा है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसको जाकर नहीं अज़ मुनकर करूं। ये निजाम इज्तिमाई जो अभी खुद इमाम फरमा रहे ना कि आमाल हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के आमाल, इस उम्मत के आमाल का मतलब यह है कि हर इंडिविजुअल का फरीजा है कि वो सिर्फ अपने आप को नहीं देखे, सिर्फ अपनी मैं को नहीं देखे, बल्कि उसकी मैं वसी होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए। यानी चाहिए देखें, हम एक दफा कहते हैं कि अनानियत, हम कहते हैं ना अनानियत, अनानियत एक नेगेटिव चीज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अनानियत का एक पॉजिटिव पहलू भी है, मैं का एक पॉजिटिव है। एक दफा मैं अपने आप को देखता हूं फकत, सही है, इसका मतलब मैं दूसरों से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, दूसरा जो गुनाह अंजाम दे मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक दफा ये मैं ब्रॉड हो जाती है, इसका दायरा वसी हो जाता है, यानी मैं मेरा खानवादा, यानी जब ये मेरा खानवादा है, यानी ये मेरा खानवादा भी मैं है, यानी इसका मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों की तरबियत करूं, अपने माँ बाप की इताअत करूं, अपने बहन भाई की रिस्पेक्ट करूं, मैं मेरा खानवादा मेरी सोसाइटी। अब देखें मैं का दायरा कितना वसी हो जाता है, अब ये मेरी सोसाइटी है, इन तमाम इंसानों का ताल्लुक मुझसे है। अगर वो मर्द मुसलमान, वो फर्द मुसलमान कोई गुनाह अंजाम दे रहा है, मसलन गली के उस कोने में, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे पता है वहां गुनाह अंजाम पा रहा है, हतमन मेरा फरीजा बनता है कि मैं उसको जाके रोकूं। ये है नहयज मुनकर, ये है मैं का ब्रॉड होना। अब यहां पर हमारा टाइम खत्म हो रहा है और 3 से 4 हदीसें मौजूद हैं, ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम मजीद देखेंगे, तमाम हदीसें यहाँ कंप्लीट करनी है, ये तीन तीन सेशंस इंशाल्लाह होंगे, अगले 2 सेशंस बाकी हैं, और इन 2 सेशंस के अंदर तमाम हदीसें जो निज़ाम आमाल और आमाल को जब पेश किया जाता है आइमा अलैहिस्सलाम की खिदमत में, उन तमाम इस मौजू से रिलेटेड जितनी भी अहादीसें आई हैं इंशाल्लाह उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको मैं लिख चुका हूँ आप यहाँ पर लैपटॉप पे, और इसको इंशाल्लाह पेश किया जाएगा आपकी खिदमत में। आप फकत, मैं आपके सामने एक सवाल पेश कर, आप फकत ये सोचें कि क्यों मुख्तलिफ औकात में, बाज़ुकात जुमेरात को, बाज़ुकात साल में एक दफ़ा 15 शाबान, एक और हदीस में आया पीर और जुमेरात को, क्यों इतने मुख्तलिफ टाइम्स में इन आमाल को पेश किया जाता है, इसकी क्या वजह, आप इसके बारे में इंशाल्लाह अगले सेशन तक सोचें और कोशिश करें इसका जवाब हासिल करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व
बरकातुहु।